हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए, क्योंकि सभी के मन में अलग अलग तरह की शंकाएं पैदा हो चुकी थीं और सभी लोग बैठकर एक बार फिर से बातें करना शुरू कर चुके थे। कहा तो यही गया था कि पार्टी पूरी तरह से माहौल को विराम देने के लिए की गई थी, लेकिन यहाँ तो अब एक बार फिर सच्चाई सामने खड़ी हो गई थी। इस हालात में दादी का असर पूरी तरह से झकझोर कर रख देने वाला था। वहीं रणविजय के चेहरे पर अचानक एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो तो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो मन ही मन बोला था, ये अच्छा हुआ, अनामिका तो मेरे किसी काम नहीं आ पाई, लेकिन यह आकांक्षा तो बड़े काम की चीज निकल गई, मज़ा ही आ गया। ये सोचते हुए रणविजय पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था। वहीं झलक ने जैसे ही देखा कि नैना ओबेरॉय को सभी मीडिया कर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया है और नैना ओबेरॉय के साथ साथ आकांक्षा बस खड़ी होकर तमाशा देख रही है, तो झलक ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि भले ही नैना ने उसे जन्म दिया था और वो उसकी माँ थी, चाहे उसने उसे कचरे के ढेर में फेंकने की कोशिश ही क्यों ना की हो, फिर भी वो उसकी माँ थी। अब झलक तुरंत आगे बढ़ी और सीधा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने वहां मौजूद सभी लोगों और मीडिया कर्मियों को देखते हुए गुस्से में कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से इन्हें परेशान करने की? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? क्या तुम लोगों में इतनी भी अकल नहीं है कि किसी औरत को इस तरह से परेशान नहीं किया जाता? क्या तुम लोग इतने गिरे हुए हो? झलक गुस्से से कांप रही थी और आगे बोली, अगर किसी ने भी एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं उन लोगों के दांत तोड़ दूंगी। अब झलक ने पूरे दबंग अंदाज में जैसे ही ये कहा, एक पल के लिए नैना की आंखें भर आई थीं। उसकी अपनी बेटी ने उसे एक अजीब सी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन एक तरफ झलक थी जो जाकर उसके लिए स्टैंड ले रही थी। लेकिन तभी आकांक्षा अचानक आंखों में आंसू लिए आगे आई और तुरंत बोली थी, झलक प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये मीडिया है और मीडिया से तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। थोड़ा सा तमीज में रहो, क्योंकि तुम हमारे परिवार की बदनामी करने के पीछे ही लगी रहती हो। तुम भी ओबेरॉय परिवार का हिस्सा हो, ओबेरॉय परिवार की बेटी हो, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा लोगों से तमीज और दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। वहीं सिद्धार्थ के लिए अब सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली थी और सोच लिया था कि वो सभी लोगों को यहाँ से जान से मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन दादी ने मामले की नज़ाकत को तुरंत समझते हुए सिद्धार्थ के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया था और उसकी ओर देखकर बोली थी, बेटा शांत हो जाओ, अगर इस तरीके से तुम परिवार के बीच में कुछ भी करोगे तो इससे खुराना परिवार की और ज्यादा बदनामी होगी। तुम्हें इस वक्त शांत रहना होगा, चुपचाप खड़े रहो, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी की बात सुनकर सिद्धार्थ बस अपना खून खुद पीकर रह गया था और बोला था, कोई शौक नहीं था मुझे इस तरह की पार्टी करने का, देखा आपने क्या ड्रामा हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ये लड़की कहीं भी लेकर जाने के लायक नहीं है, देखा आपने कितनी बदतमीजी से मीडिया से बात कर रही है। और आपको क्या लगता है, इस लड़की के इस तरह मीडिया से बात करने के बाद खुराना परिवार की कोई इज्जत बचेगी? नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं होगा। हर तरफ से इस लड़की ने और ज्यादा बेइज्जती बढ़ा दी है, हर जगह सिर्फ हमारे परिवार की ही बातें हो रही हैं। मैं इस लड़की की जान लेकर ये सारा मामला खत्म कर देता हूँ। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये कहा, दादी का खून पूरी तरह खौल उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम शांत नहीं रहे तो तुम हमारा मरा मुंह देखोगे, तुम चुपचाप खड़े हो जाओ। और वैसे भी हम इस तरीके से ओबेरॉय परिवार के बीच कुछ नहीं कर सकते, शांति से खड़े रहो, परिवार के साथ रहो, किसी ने अगर कोई सवाल खड़ा किया तो मैं देख लूंगी। दादी की बात सुनकर सिद्धार्थ के पास चुप रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वहीं अनामिका पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे, क्योंकि वो झलक की मदद करना चाहती थी, लेकिन इतने सारे मीडियाकर्मी और लोग बीच में थे कि झलक तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। फिलहाल आकांक्षा जिस तरह से बोल रही थी, झलक अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गुस्से में आकांक्षा को खींचकर एक जोरदार तमाचा दे मारा और उसकी ओर घूरते हुए बोली, अरे कैसी बेटी है तू, वहां तेरी माँ को इस तरह पूरा मीडिया परेशान कर रहा है और तुझे अभी भी इज्जत संस्कार और सभ्यता की पड़ी है, कर क्या रही है तू? जैसे ही झलक ने आकांक्षा पर हाथ उठाया, आकांक्षा अंदर ही अंदर खून का घूंट पीकर रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को इशारा किया और कहा कि अगर अभी सच नहीं बताया गया तो वो खुद को बंदूक से उड़ा लेगी। पूरी तरह से परेशान होती हुई नैना अचानक आगे आई और झलक को खींचकर एक जोरदार तमाचा दे मारा। वो चिल्लाते हुए बोली, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, नफरत करती हूँ मैं तुझसे। और एक बात कान खोलकर सुन ले, तू इस परिवार का हिस्सा नहीं है। तू जानना चाहती थी ना कि मैं तुझसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ, क्यों मैंने तुझे कचरे के ढेर में फेंक दिया था? तो सुन, मैं तुझसे नफरत इसलिए करती हूँ क्योंकि तू उस जबरदस्ती की निशानी है जो मेरे साथ हुई थी, उस काली रात की निशानी है जब मुझे अगवा करके एक आदमी ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था, तू उसी की निशानी है। मैंने तेरा डीएनए टेस्ट करवाया था जो नेगेटिव था, तुझे पैदा तो मैंने किया लेकिन तेरा बाप कोई और था, इसका मतलब समझती है ना तू? तू नाजायज है, सिर्फ और सिर्फ नाजायज, इसीलिए मैंने तुझे कचरे के ढेर में फेंकने की कोशिश की थी। जैसे ही ये सारी बातें भरी महफिल में नैना के मुंह से निकली, झलक को ऐसा लगा मानो उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया हो। मनहूस का ठप्पा वो बचपन से सुनती आई थी, लेकिन आज एक और ठप्पा उसके नाम के साथ जुड़ चुका था, नाजायज। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वहीं आकांक्षा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आखिरकार उसका काम पूरा हो चुका था। सिद्धार्थ खुराना के कानों में जैसे ही ये बातें पड़ी, वो भी पूरी तरह से हैरानी से भर गया। उर्वशी जी भी स्तब्ध रह गई थी। सिद्धार्थ खुराना पूरी तरह से शंकाओं में घिर चुका था। उर्वशी जी को भी ऐसा लगा मानो वो पत्थर की तरह जम गई हो। अनामिका भी पूरी तरह से सदमे में डूबी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर अनामिका की आंखें भी भर आई थीं। ये रहा बिना शब्द घटाए भाव और घटनाएं जस की तस रखते हुए सुधारा हुआ पाठ। केवल भाषा, व्याकरण और प्रवाह ठीक किया गया है। धन्यवाद। वहीं रणविजय अब थोड़ा सा सधे हुए चेहरे के साथ झलक को देखने लगा था। वो चाहता तो था कि ये पार्टी पूरी तरह से स्पॉइल हो, लेकिन ये पार्टी इतनी बुरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी, इसका तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं अपने अनुभव के आधार पर इस तरह से दौड़ते हुए मीडिया को देखकर और इस तरह का खुलासा होने पर तो ये पूरी तरह से ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। आखिरकार इतने बड़े परिवार का राज बाहर आ चुका था। वहीं ईशान और वैभव, जिनको पहले ही आकांक्षा ने गिफ्ट लेने के बहाने बाहर भेज दिया था और इसी बीच सारा ड्रामा क्रिएट कर दिया था, जैसे ही वे वहां वापस आए और आते ही उन्होंने नैना के इस तरह से चीखते हुए बातें सुनी, वे दोनों भी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। अब तो उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ईशान तुरंत दौड़कर नैना के पास गया और उसे संभालने लगा था, लेकिन तब तक रिपोर्टरों ने उनके पास एक से बढ़कर एक सवालों की झड़ी लगा दी थी। क्या ये सच है मिस्टर ओबेरॉय? क्या ये सच है कि आपके साथ बलात्कार हुआ था? किसने किया था?
क्या उसके बारे में आपको कुछ पता था? आपने उस वक्त क्या रिएक्शन दिया था? जब आपको ये सच पता चला तब क्या हुआ था? एक एक करके अलग अलग तरीके से मीडिया कर्मियों के सवाल उठने लगे थे और नैना अब पूरी तरह से टूट सी गई थी। वैभव और ईशान ने जल्दी ही नैना को वहां से ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया था और वहां से रवाना हो गए थे।